कार्तिका अपने फायदे के लिए आहन के बच्चे को ले जा चुकी थी। उसने बड़ी ही सावधानी से आहन के बच्चे को किडनैप किया था और उसे उठाते ही वो सीधे अक्षरा के पास पहुंची। कार्तिका जब अक्षरा के घर पहुंची तब वक्त सुबह के लगभग 3 बज रहे थे। कार्तिका पहले भी वहां आ चुकी थी, फिर भी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बाहर ही रोक लिया था। कार्तिका ने अपने हाथ में बच्चे को भी ले रखा था। गार्ड ने उसे घूरते हुए देखा और सख्त लहजे में कहा, देखिए मैडम, ये यहाँ आने का सही टाइम नहीं है। वैसे भी अक्षरा मैडम ने कहा है कि रात के वक्त आपको अंदर न आने दिया जाए। अक्षरा ने ये ऑर्डर इसलिए दिए थे क्योंकि उसे डर था कि कहीं रात के अंधेरे में कार्तिका अपने भाई बहनों को वहां से ना ले जाए। कार्तिका उस वक्त काफ़ी घबराई हुई थी। ऊपर से अक्षरा के ऐसे ऑर्डर सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी घबराहट को काबू करके कहा, तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। इतनी रात को मैं इस बच्चे के साथ कहीं और भी नहीं जा सकती। आप क्या चाहती हैं कि इतनी रात को उन्हें जगाकर हम अपने लिए मुसीबत मोल लें? आप प्लीज़ जाइए यहाँ से, हम उन्हें सुबह इन्फॉर्म कर देंगे। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अक्षरा को बुलाने के लिए साफ मना कर दिया। कार्तिका के पास और कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से उसके पास आहान और चाहत का बच्चा भी था। अगर कार्तिका अपने घर जाती तो उसके पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा थे। ऐसे में कार्तिका धैर्य को लेकर वहाँ से निकल गई थी। कार्तिका धैर्य को लेकर कहाँ गई थी इस बारे में कोई नहीं जानता था। सुबह होते ही आहान को धैर्य के गायब होने का पता चल गया था और साथ ही ये भी कि उसके बच्चे को लेकर कार्तिका गई है। आहान अपने आदमियों के साथ कार्तिका के घर पहुंचा। वो जानता था कि वो कहाँ रहती है। इस बीच आयुष अभी भी घर पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम में था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कार्तिका ऐसा कुछ कर सकती है। शिवानी जल्दी से आयुष के पास आई और उसके हाथ को सहलाते हुए कहा, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, पर आहान को भी तुम्हें समझना होगा। वो लड़की उसके बच्चे को लेकर चली गई है। सोचो, ऐसे में चाहत को पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। एक माँ के लिए उसका बच्चा सब कुछ होता है, जबकि हमारा धैर्य तो सिर्फ एक हफ्ते का है। शिवानी के हाथ रखते ही मानो आयुष को होश आ गया हो। आयुष तुरंत ही अपनी कश्मकश से बाहर निकल आया था। आयुष ने जल्दी से शिवानी को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, मॉम, मैं भाई के पीछे जा रहा हूँ, मैं पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। डोंट वरी, हम लहरे को ढूंढ लेंगे। अपने भाई के साथ रहना, कहीं वो अपने गुस्से में कुछ गलत ना कर दे, शिवानी ने रुंधे गले से कहा। आयुष जल्दी से दौड़कर बाहर गया। उसने गाड़ी निकाली और पुलिस स्टेशन चला गया। इस बीच चाहत की आंखें खुली तो घर में बिल्कुल शांति थी। आहान और धैर्य तक उसके पास नहीं थे। धैर्य को अपने पास ना देखकर एक पल के लिए चाहत घबरा गई थी। राजवीर से बात करने के बाद उसके दिल के अंदर एक डर बैठ गया था। फिर आहान वहां भी नहीं था। चाहत ने मन ही मन खुद को समझाते हुए कहा, आहान यहाँ नहीं है, जरूर धैर्य को लेकर नीचे गए होंगे। उन्हें इतनी बार समझाया है कि अगर धैर्य रोने लगे तो मुझे जगा दिया करें, लेकिन नहीं, जरूर मॉम को ही परेशान किया होगा। चाहत बिस्तर से उठी और धीमे कदमों से चलते हुए नीचे जा रही थी। उसने रूम के बाहर आते ही आवाज लगानी शुरू कर दी थी। आहान, आहान कहाँ है आप? धैर्य आपके साथ है क्या? चाहत ने तेज आवाज में कहा। शिवानी इस वक्त बाहर से अंदर आई हुई थी। जब उसने चाहत की आवाज सुनी तो वो जल्दी से दौड़कर ऊपर गई। उसने अपनी आंखों के कोनों को साफ कर दिया ताकि गलती से भी चाहत के सामने रोना दे। शिवानी ने चाहत के पास आकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बेड से नीचे क्यों उतरी? डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट रेस्ट के लिए कहा है। कोई काम था तो मुझे कॉल कर देती। अगर आहान ने तुम्हें इस तरह बाहर देखा तो फिर वो मुझ पर गुस्सा करेगा। हाँ, मैं भी बस अंदर जा ही रही थी। वो बस आहान को बोल दीजिए ना कि धैर्य को मेरे पास कमरे में छोड़ दे, चाहत ने परेशान स्वर में कहा। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि थोड़ी ही देर में धैर्य के बिना उसकी हालत खराब होने लगेगी। धैर्य का जिक्र होते ही शिवानी की पलकें भीगने लगी थी। अपने आंसुओं को कंट्रोल करने के लिए वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाने लगी। शिवानी ने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, वो आहान उसे लेकर बाहर गया है। क्या? लेकिन क्यों? अभी वो बहुत छोटा है, आहान मुझसे पूछे बिना उसे बाहर लेकर कैसे जा सकते हैं? मुझे बताइए वो कहाँ गए हैं। आप रहने दीजिए, मैं ही कॉल करके बोलती हूँ कि वो जल्दी वापस आ जाए, चाहत ने हड़बड़ाते हुए कहा। चाहत जल्दी से तेज कदमों से चलते हुए अंदर जाने लगी। तभी शिवानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया था। शिवानी ने चाहत की आंखों में देखते हुए भारी आवाज में कहा, तुम गहरी नींद में थी इसलिए आहान ने तुम्हें जगाया नहीं। वो एक्चुअली धैर्य को थोड़ा फीवर था, वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया है। आयुष भी उसके साथ है, बस कुछ देर में वो दोनों आ जाएंगे। धैर्य की तबीयत खराब होने का सुनकर चाहत की बची कुची हिम्मत भी टूट गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। चाहत ने सुबकती हुए कहा, अगर मैं नींद में थी तो मुझे जगा लेते ना, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। मॉम, प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए। चाहत बुरी तरह से रोने लगी थी। शिवानी ने उसके कंधे को सहलाया और फिर उसे गले से लगाकर उसकी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। चाहत बेटा, हिम्मत रखो, वो आहान का भी बच्चा है, उसकी अच्छे से देखभाल कर सकता है। तुम इस वक्त काफी कमजोर हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, और अगर धैर्य की तबीयत ज्यादा खराब होती तो वो तुम्हें जरूर जगा लेता, शिवानी ने चाहत को समझाते हुए कहा। फिर वो उससे अलग हुई और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाते हुए बोली, कुछ ही देर में वो आ जाएंगे, चलो तुम तब तक आराम करो। शिवानी का कहना भी गलत नहीं था। एक्सीडेंट और डिलीवरी के बाद से वो काफी कमजोर हो गई थी। ज्यादा देर तक चाहत खड़ा भी नहीं रह पाती थी। चाहत ने आगे बहस नहीं की और खुद को मन ही मन समझाने लगी। चाहत ने अपने मन में कहा, वो आहान के साथ है तो मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे उस पर यकीन रखना होगा। अगर मैं ऐसे ही ओवर रिएक्ट करती रही तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। शिवानी ने जैसे तैसे चाहत को बिस्तर पर लेटा दिया था। फिर उसने चाहत के लिए नाश्ता मंगवाया और जबरदस्ती उसे थोड़ा बहुत खाना खिलाया। हालांकि ये बात अलग थी कि चाहत बार बार धैर्य और आहान के अपडेट के बारे में पूछती रही, तो शिवानी उसे किसी न किसी बहाने से टाल रही थी। वहीं दूसरी तरफ आहान सीधे कार्तिका के घर पर पहुंचा, लेकिन जैसा कि उसका अंदाजा था, घर लॉक था। वो बार बार कार्तिका के नंबर पर कॉल भी कर रहा था, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। कुछ ही देर में आहान फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसे अपने बच्चे के साथ साथ चाहत की भी फिक्र सता रही थी। आहान ने गुस्से में कार्तिका के घर पर लात मारी और फिर वो गहरी सांस लेते हुए बोला, अब तक तो डॉल उठ गई होगी और उसे मॉम के लिए उसे अकेले संभालना मुश्किल रहा होगा। मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द हमारे बच्चे को ढूंढकर चाहत के पास लेकर जाना होगा। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमारे बच्चे को हर खतरे से प्रोटेक्ट रखूंगा और इतनी जल्दी वो हमसे दूर हो गया। आहान मन ही मन सोच रहा था कि आखिर कार्तिका को कौन उनके पास भेज सकता है। तभी उसके दिमाग पर राजवीर का ख्याल आया। कल रात को राजवीर उसे धमकी भी दे रहा था। तुरंत ही आहान के चेहरे के भाव सर्द हो गए थे। उसने एक ठंडे अंदाज में कहा, अगर तुमने ये किया है ना राजवीर शर्मा, तो ये आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आई स्वेयर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
आहान के जहन में यही आया कि जरूर राजवीर ने कार्तिका को भेजा होगा। वो अपनी गाड़ी लेकर राजवीर शर्मा के ऑफिस जाने के लिए निकल गया। इस बीच उसने अपने आदमी मोंटे को कॉल किया। मोंटी, अगले एक घंटे में मुझे कार्तिका से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो किसके लिए काम कर सकती है, इससे जुड़ी सारी पॉसिबिलिटीज पर गौर करो। मुझे मेरा बेटा हर हाल में चाहिए, आहान ने सख्त आवाज में कहा। बस मैं आपके काम में ही लगा हुआ हूँ और मैंने अपने आदमियों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट लगा दिया है। मैंने उन लोगों से भी बात कर ली है जो इल्लीगल तरीके से शहर के बाहर ले जाते हैं। वो लड़की शहर से बाहर एक कदम भी नहीं रख पाएगी, मोंटी ने जवाब दिया। आहान आगे कुछ नहीं बोला और उसने सीधा कॉल काट दिया था। वहीं दूसरी तरफ आयुष ने पुलिस को सारा डेटा दे दिया था और साथ ही धैर्य की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवा दी थी। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस वाले ने आयुष की तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए अंदाज में कहा, ये लड़की डेफिनेटली अपने घर नहीं गई होगी, हॉस्पिटल जाने का सवाल पैदा नहीं होता है, फिर भी हम वहाँ भी पूछताछ कर लेंगे। ये आपकी दोस्त थी तो क्या आपको अंदाज़ा है कि ये कहाँ जा सकती है? मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है इंस्पेक्टर, मैं थोड़े टाइम पहले ही उसे मिला था। हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि उसके भाई बहन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आयुष ने मायूसी से बताया। कार्तिका उसकी वजह से धैर्य को उनके घर से आसानी से किडनैप करके ले जा सकी थी, इस बात का उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो लड़की खुद गायब है तो उसके भाई बहन भी गायब ही होंगे। चलिए हम सबसे पहले उनके स्कूल में ही चलते हैं। अगर बच्चे वहाँ हुए तो वो आपसे फ्रेंडली बिहेव करेंगे, हम उनके जरिए काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं, इंस्पेक्टर अपनी जगह से उठते हुए बोला। उसने अपने सभी कांस्टेबल को काम पर लगा दिया था। आयुष के आने से पहले ही आहान कॉल करके इस केस के बारे में डिस्कस कर चुका था। वो तुरंत ही बच्चे के स्कूल जाने के लिए निकल गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ आहान राजवीर शर्मा के ऑफिस पहुंचा। राजवीर अपने केबिन में बैठकर आहान के खिलाफ प्लानिंग बना रहा था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा एक झटके में खुला। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये क्या बदतमीजी है? अचानक ही उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे क्योंकि सामने आहान खड़ा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी और उसने उसे लोड करके अपनी कमर पर रख रखी थी। आहान ने राजवीर के माथे के बीचों बीच रिवॉल्वर रखते हुए कहा, तुम्हारे पास एग्जैक्टली एक मिनट का टाइम है। इस एक मिनट में अगर तुम्हारा मुंह नहीं खुला तो मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारी आंखें बंद कर दूंगा। आहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। आहान के हाव भाव देखकर साफ था कि इस वक्त वो किसी भी झूठ सुनने के मूड में नहीं है। तो वहीं राजवीर समझ नहीं पा रहा था कि उसके बिना कुछ कहे आहान ने उस पर हमला क्यों बोल दिया था।